जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण। कल गौर कथा में चर्चा ये चल रही थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को अपना वराह रूप दिखाया। जब उन्होंने वराहदेव के बारे में एक श्लोक सुना, उस समय वातावरण नवद्वीप में काफी तनाव का था, क्योंकि महाप्रभु और उनके भक्त बहुत जोरदार कीर्तन किया करते थे दिन भर, और इसकी वजह से जो अभक्त थे नवद्वीप में वो बहुत क्रोधित हो गए थे और नाना प्रकार के बुरी बातें कहते थे भक्तों के बारे में। और फिर एक अफवाह फैल गई कि वहां के जो यवन बादशाह हैं वो दो नौ के भर के सैनिक या सिपाही भेज रहे हैं भक्तों को गिरफ्तार करने के लिए। और ऐसे अफवाह भी फैल गई कि शायद बादशाह आके सारे गांव को भी नष्ट कर दे क्रोध में। लेकिन निमाई पंडित महाप्रभु, उनको कोई डर नहीं था, आखिर वो तो है भगवान। बस यूं ही घूमते फिरते थे नवद्वीप के सड़कों में, मानो कि वो एक राजकुमार है। और फिर जब उन्हें पता चला कि भक्तगण भी थोड़ा बहुत डर गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अभी समय आ गया है उनको सांत्वना देने के लिए। तो जब श्रीवास पंडित के घर में गए, वराह रूप का दर्शन कराया उनको, फिर श्रीवास पंडित को आज्ञा दी कि मेरी स्तुति करो। श्रीवास पंडित ने स्तुति की। चैतन्य महाप्रभु ने वेदों के ऊपर और उन मायावादी लोगों के ऊपर जो कि वेदों के उपदेशों को तोड़ मोड़ कर कुछ गलती प्रस्तुत करते हैं उनके ऊपर क्रोध प्रकट किया और सही सिद्धांत को पेश किया कि वास्तव में भगवान परम तत्व एक व्यक्ति है, सच्चिदानंद विग्रह, और वही व्यक्ति अब कलयुग में नाम संकीर्तन के आंदोलन को फैलाने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए आए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बादशाह कोई सैनिक भेजे, कुछ भी करे, कोई चिंता की बात नहीं है। महाप्रभु ने कहा मैं स्वयं जाके बादशाह से बात करूंगा और उसे चैलेंज करूंगा कि आपने जिन काजी मुल्लों के उपदेश और सलाह को सुना है और सुनकर आपने ये कदम उठाया यहाँ आक्रमण करने का, उनको बुलाइए और इन हाथी घोड़े बैल बंदर पक्षी इत्यादि इनके मुख से कृष्ण का नाम निकालिए और इनकी आंखों से आंसू निकालिए कीर्तन करते समय, वो नहीं कर पाएंगे। फिर मैं बोलूंगा ले आओ आपके पशुओं को और उन्मत्त हाथी को लेकर आऊंगा और उसके नाम से कृष्ण का नाम निकलवाऊंगा और उसकी आंखों से आंसू बहाऊंगा और कहूंगा कि देखो ये है कीर्तन की शक्ति। तो महाप्रभु कह रहे थे कि अपने भक्तों को कोई डरने की बात नहीं है, निडर रहो, कृष्ण नाम लेते रहो। इस तरह से नवद्वीप में कृष्ण संकीर्तन चलता रहा। अद्वैत आचार्य उधर शांतिपुर चले गए थे क्योंकि वो भगवान की परीक्षा ले रहे थे। हालांकि वो जानते थे अच्छी तरह से कि भगवान कौन है, किस रूप में भी आए हैं, लेकिन फिर भी एक लीला है, वो और भी प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते थे। तो महाप्रभु ने रमाई पंडित को भेजा अद्वैत आचार्य को वापस बुलाने के लिए। अद्वैत आचार्य आए तो सही, लेकिन नंदन आचार्य के घर में छुपके रहे। महाप्रभु को पता चला, उन्होंने रमाई पंडित से कहा कि नंदन आचार्य के घर से बुला के ले आओ। फिर अद्वैत आचार्य को उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया और उनको आदेश दिया कि मेरी पूजा करो, मेरी स्तुति करो, और बाद में आदेश दिया कि नृत्य करो, कीर्तन करो। इस तरह से अद्वैत आचार्य और उनके पत्नी का जीवन भी धन्य हो गया। ऐसे कीर्तन के कार्यक्रम चलते रहे नवद्वीप में। इस दौरान नित्यानंद प्रभु भी वहां पर आ चुके थे नवद्वीप में, और हमेशा महाप्रभु के संग में रहा करते थे कीर्तन में, और जहां भी वो जाते वहां नित्यानंद प्रभु अवश्य साथ में रहते। इसी समय नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के एक नित्य पार्षद, भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही शुद्ध भक्त वहां आए नवद्वीप में, जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। बहुत महान भक्त थे और उनका जन्म हुआ था एक गांव में जिसका नाम था मेखला ग्राम, जो कि चित्तग्राम जिले में था, जो कि गौड़ देश के पूर्व भाग में था। चैतन्य महाप्रभु ने चाहा था कि इस भूमि को भी धन्य किया जाए, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उनके नित्य पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म इस जगह में हुआ। चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है, कलयुग के अवतार, और उनका काम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, सारे विश्व भर में नाम संकीर्तन को फैलाना, कृष्ण प्रेम को बांटना, और इसके लिए उनको साथी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु अपने भक्तों से निवेदन करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक माली की जैसा हूँ जो कि कृष्ण भक्ति का बीज सब जगह सबके हृदय में मैं आरोपण कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं कितना कर पाऊंगा। हालांकि वो भगवान है लेकिन फिर भी भक्त के रूप में आए हैं, इसलिए कहते हैं मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेला कितना कर पाऊंगा, इसलिए आप सब मेरे साथ में आओ, मेरे साथ मिलकर आप एक कृष्ण प्रेम का स्वाद उठाओ और कृष्ण प्रेम को सब जगह बांट दो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की योजना से उस समय गौड़ देश में भी जगह 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 भक्तों ने जन्म लिया। ऐसा नहीं कि केवल नवद्वीप में उनका जन्म हुआ, अलग अलग स्थानों में, जैसे कि पूर्व बंगाल में भी तपन मिश्रा का जन्म हुआ था जो आज बांग्लादेश है, और तपन मिश्र को उन्होंने कहा था कि आप वाराणसी चले जाओ काशी, जब मैं वृंदावन की ओर जाऊंगा तो मैं तुम्हारी ऊपर कृपा करूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा मैं। तो वो उस समय की बात थी, लेकिन 500 साल बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने कई ऐसे लोगों को अलग अलग जगह में जन्म लेने की व्यवस्था कर दी। अभक्तों के, नास्तिकों के घरों में जो चारों नियम तोड़ रहे थे, ऐसे परिवारों में उनको जन्म दिया। वैसे देखा जाता है कि जो कृष्ण भक्त है या जिसको आगे चल के कृष्ण भक्ति के आंदोलन में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो गीता के अनुसार उसका जन्म एक शुचि के परिवार में होना चाहिए, मतलब जो पुण्यवान व्यक्ति है, ब्राह्मण है, या ऐसे कोई धनवान परिवार में जो भी पुण्य है, ऐसे कुटुंब में जन्म लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि करीब करीब 30 साल पहले से अलग अलग भक्तों ने जन्म लिया, अलग अलग तरह के कुटुंबों में, पापी से पापी कुटुंबों में, पापी से पापी क्षेत्रों में, जगहों में, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, जगह जगह। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने खास करके उनको वहां, उन जीवात्माओं को रखा था, वहां जन्म ले लो और जब जन्म लोगे तो मेरे शुद्ध भक्त सेनापति जब वहां जाएंगे विदेश, वो सब जगह फैलेंगे, उनकी सहायता करना तुम, और इस नाम संकीर्तन आंदोलन को फैलाना सब जगह। तो महाप्रभु के योजना से ही सब भक्तों ने जगह जगह जन्म लिया, जैसे आप सब ने यहाँ बेलगाम में अलग अलग जगह जन्म लिया है महाप्रभु की योजना से इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, तो उसी तरह से पुंडरीक विद्यानिधि उनका जन्म चित्तग्राम में हुआ था। वैसे जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे उनके साथ में उनके नित्य पार्षद आए थे, कई हजारों की संख्या में उनके धाम से आए थे नीचे, और यही नित्य पार्षद जो कृष्ण लीला में आए थे वो ये भी चाहते थे कि जब हमारे प्रभु हमारे कृष्ण जब ये विशेष अवतार गौरांग महाप्रभु का लेकर आएंगे तब भी हम उनकी लीला में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि जो रस का स्वाद वो करने वाले हैं और हम सबको कराने वाले हैं बड़ा वो निराला है और कहीं नहीं मिलेगा हमको, इसलिए हम इस अवतार में भी इस लीला में भी भाग लेना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी आए थे हरिदास ठाकुर के रूप में और वृंदावन में भी जो आए थे वो सब वहां पर प्रकट हुए। तो श्रीमती राधा रानी उनकी पिताजी वृषभानु महाराज वो भी प्रकट हुए थे और वो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में प्रकट हुए। एक ग्रंथ है जिसका नाम है गौड़ गणोदेश दीपिका, जिसमें वर्णन आता है उन सारे भक्तों का जिन्होंने कृष्ण लीला में भाग लिया था, जैसे गोपियां हैं मंजरियां हैं ग्वाल बाल हैं भगवान से जो मित्र थे वरिष्ठ गोप गोपियां हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। और ये सारे जो भक्त हैं वो गौर लीला में किस रूप में प्रकट हुए नाम लिखा है, कौन कृष्ण लीला में था और गौर लीला में वो क्या बना। तो इस तरह से विश्वभानु महाराज पुंडरीक विद्यानिधि बने और चट्टग्राम में प्रकट हुए। तो एक दिन जब नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु बैठे थे तो बड़े घने सांस ले रहे थे, मानो कि उनको कोई कष्ट हो रहा है, और बीच बीच में पुकारते, हे पिता हे पुंडरीक कहाँ है वो आप जल्दी आओ। तो बीच बीच में जब ऐसे बोलते तो भक्तों को पता नहीं चलता क्या वो कह रहे हैं किसको बुला रहे हैं। फिर से अचानक बोलते, हे पिता हे मेरे मित्र हे पुंडरीक चले आओ। भक्तों ने क्या सोचा कि शायद वो भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं, क्योंकि कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण हमारे मित्र है सब कुछ है, तो हे पिता पुंडरीक कह रहे हैं मित्र पुंडरीक कह रहे हैं, और वैसे अक्सर वो हा कृष्ण कहते घूमते थे तो हो सकता है वो कृष्ण को पुकार रहे हैं। पुंडरीक पुंडरीक मतलब कमल, विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, संस्कृत साहित्य में ये वर्णन आता है पुंडरीक का। सूर्य के कई अर्थ हैं, कई शब्द होते हैं संस्कृत भाषा में, जैसे अर्क भास्कर दिनकर, तो एक शब्द ऐसा भी है पतंग। तो पतंग अस्य उदय, जब पतंग है सूर्य का उदय होता है, विकसित ही, तो जो चीज विकसित होती है वो खिल जाती है वो है पुंडरीक। तो क्या चीज है जो सूर्योदय के साथ खिल उठती है, कमल कमल पुष्प। तो पुंडरीक का अर्थ है पुष्प कमल पुष्प। आप में से जो एकादशी की शाम को यहाँ आते रहते हैं आपको मालूम है कि पिछले तीन एकादशियों से रामानुजाचार्य की कथाएं चल रही हैं। तो दो एकादशी पहले ये कथा आई थी कि बालक रामानुज अपने गुरुकुल में थे, उनके गुरु से सुन रहे थे जिनका नाम था यादव प्रकाश, लेकिन यादव प्रकाश ये मायावादी थे भक्त नहीं थे। और जब चांदो के उपनिषद के ऊपर वो प्रवचन दे रहे थे तो ये एक श्लोक आया जिसमें ये भगवान का वर्णन किया जाता है, तस्य यथा कप्यसाम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। तो ये कप्यसाम शब्द जब आया कपि आसम, तो यादव प्रकाश इसका वर्णन कर रहे थे कि भगवान विष्णु के नेत्र जो है लाल रंग के हैं, जिस तरह से एक कपी का पिछला भाग, कपी मतलब बंदर, जिसे आप जानते हैं कपी ध्वज अर्जुन का नाम है क्योंकि उनके ध्वज के ऊपर कपी हनुमान जी का तस्वीर है चिन्ह है। तो अर्जुन का नाम है कपिल ध्वज। तो ये मायावादी यादव प्रकाश ने ऐसे वर्णन किया कि भगवान विष्णु की आंखें लाल हैं जैसे कि एक बंदर का पिछला हिस्सा। उस समय रामानुजा अपने गुरुओं का शरीर मालिश कर रहे थे तो उनको इतना धक्का पहुंच गया कि इस तरह से वो वर्णन कर सकते हैं भगवान विष्णु के बारे में। तो उनके आंखों से लाल जो गरम गरम आंसू गिरने लगे। कुछ कह तो नहीं पाए क्योंकि वो गुरु थे आखिर, लेकिन दुख के मारे आंसू गर्म हो गए थे और उनके शरीर पर गिर गए। जब शरीर पे गिरे तो फिर गुरु को पता चला यादव प्रकाश को कि ये क्या हो गया। अरे रामानुज क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो? तो रामानुज ने कहा कि आपने जो बिल्कुल गलत ढंग से, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ क्योंकि आपने गलत ढंग से इस श्लोक का तात्पर्य लिया है। आपने कहा है कि विष्णु की आंखें एक बंदर के पिछले के हिस्से की तरह लाल है। तो यादव प्रकाश गुस्सा आया, वो कहने लगे अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ कि मेरा शिष्य मेरे साथ ऐसे बात करे। अगर तुम अच्छी तरह और अच्छा जानते हो तो कहो, क्या मतलब है इसका? तो कहने लगे कि आपने कप्य साम का अर्थ कपि आसन कहा है, लेकिन कपि कपि इसका अलग भी अर्थ हो सकता है। कपि का अर्थ कम जलम पिबती भी हो सकता है संस्कृत में। कम जलम पिबती मतलब जो पानी को पीता है। कौन पानी को पीता है? सागर के पानी को, नदियों के पानी को, सूरज। तो कपि का अर्थ सूरज भी हो सकता है और आसम का अर्थ ये भी होता है खिलना। जो सूरज के उदय होने से जो खिलता है वो क्या है? वो कमल पुष्प है। तो कप्यासम इसका मतलब ये नहीं कि बंदर का शरीर का भाग, लेकिन ये एक कमल पुष्प है। तो इस श्लोक का जो कि चांदो के उपनिषद में आता है, इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु की आंखें एक कमल पुष्प के समान इतने सुंदर हैं। ये असली अर्थ होता है। यादव प्रकाश, उनको इतना धक्का पहुंच गया कि मेरा शिष्य मेरे से ज्यादा जानता है, लेकिन फिर भी मेरे वचन रहे, कुछ बोल नहीं पाए, अवाक रह गए। लेकिन उस दिन से उनके हृदय में रामानुज के प्रति भय उत्पन्न होने लगा, क्योंकि ये तो खुद भक्त नहीं थे यादव प्रकाश, मायावादी थे, निराकारवादी थे। रामानुज तो बचपन से भक्त थे, वैष्णव थे। तो खैर ये कथा आप सबने सुनी थी एकादशी के समय। तो कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, तो यहाँ पे पुंडरीक शब्द आता है कि भगवान की आंखें तो एक कमल की तरह सुंदर है, इसलिए उनका नाम है पुंडरीकाक्ष। पूजा करते समय जो भी आप पूजा करते हैं, आप भक्त आप जानते हैं कि पूजा के समय हम एक श्लोक कहते हैं, कौन सा है वो? ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम स भया भयंतर शुचिः। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति अपवित्र हो या पवित्र हो, या वो किसी भी अवस्था से गुजरा हुआ क्यों न हो, लेकिन अगर उसने भगवान श्री कृष्ण जिनका नाम है पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष मतलब जिसके अक्ष या जिनके आंखें हैं पुंडरी के कमल की तरह है, सुंदर हैं, तो फिर क्या होता है? शुचि, हर अवस्था में शुद्ध होता है। अंतर बढ़े वो शुचि, बाहर से भी अंदर से भी वो शुचि माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो यह है पुंडरीकाक्ष। ऐसे भगवान के आंखों की तुलना कमल से की जाती है और इस तरह से भगवान के कई नाम हो जाते हैं। आप ऐसे नाम दे सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे जो इस बात पर आधारित है कि भगवान की आंखें कमल की तरह हैं। कमल नयन बहुत सारे हैं, डजन के 25-30-50 नाम बोल सकते हैं। बोलिए, कमल नयन और कमलाक्षर, कमल लोचन और राजीव लोचन, अलग अलग कमल के शब्द लिखिए, अलग अलग आंख के शब्द लिखिए, फिर उनका कॉम्बिनेशन कीजिए। अरविंदाक्ष, बाप बहुत सुंदर। पद्म नेत्र, पद्म लोचन। एक चुटकुला है कि प्रभुपाद बताया करते थे कि माँ का प्रेम कैसे होता है, कि कभी कभी एक बच्चा अंधा है जन्म से, लेकिन माँ का प्रेम ऐसे कि वो उसका नाम पद्म लोचन रखती है। लखपत मलोचन के बहुत कमल नयन है। और कोई नाम पुंडरीकाश, वो तो यहाँ है। तो इस तरह से कई नाम आप लिख सकते हैं भगवान के। तो वैसे देखा जाए तो भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन उनके भक्त जो है उनको प्रेम से नाम रखते हैं, उनके गुणों के आधार पर, उनके रूप के आधार पर, उनकी लीलाओं के आधार पर। तो इस तरह से भक्त जानते थे कि भगवान का नाम है पुंडरीकाक्ष। तो सोच रहे थे पुंडरी पुंडरी बुला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, हो सकता है कृष्ण को ही बुला रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहने लगे है पुंडरीक है विद्यानिधि। जब विद्यानिधि कहने लगे तो फिर वो थोड़े भ्रम में पड़ गए, ये विद्यानिधि कौन? पुंडरीक ठीक है कृष्ण है, लेकिन ये विद्यानिधि कहाँ से आ गई, ये कौन है? तो फिर उनके मन में संशय हुआ कि शायद ये कोई भक्त होगा। जब हम नरोत्तम दास ठाकुर की कथा की चर्चा कर रहे थे कई रविवार पहले, आपको याद है महाप्रभु ने क्या किया था? पद्मा नदी के तट पे गए थे एक गांव के पास जिसका नाम है खेतुरी ग्राम, और चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी के इस ओर से, खेतुरी ग्राम उस ओर था, उस खेतुरी ग्राम की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाए नरोत्तम नरोत्तम। सब भक्तों ने कहा नरोत्तम क्या है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ दूरी में चिल्लाकर महाप्रभु बोल रहे नरोत्तम। फिर वो समझ गए, नित्यानंद प्रभु समझ गए कि वहाँ उस गांव में एक दिन आगे चल के नरोत्तम नाम का कोई महान वैष्णव जन्म लेने वाला है। और फिर महाप्रभु ने भविष्यवाणी की कि वहाँ एक ऐसा शुद्ध भक्त जन्म लेगा खेतुर ग्राम में जो कि मेरा नित्य पार्षद है, वो सब जगह कृष्ण प्रेम फैलाएगा और वो कीर्तन इतना मधुर करेगा, कीर्तन रस से सभी लोगों का हृदय पिघल जाएगा। इस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो महाप्रभु की आदत थी कि कभी कभी जो भक्त उनके नित्य पार्षद जन्म लेने वाले थे, जन्म लेने के पहले ही उनके स्मरण में, उनके विरह में उनका नाम जोर जोर से पुकारते थे। तो फिर जब पुंडरीक विद्यानिधि का नाम जोर जोर से उच्चारण किया महाप्रभु ने, तो भक्तों को पता चला हाँ ये कृष्ण नहीं, ये कोई भक्त की बात कर रहे हैं, तो अवश्य कोई महान भक्त अभी शायद आने वाले हैं, ये आए हुए हैं। तो बड़े आदर पूर्वक उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि लगता है कि आप किसी भक्त को पुकार रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि, तो ये कौन है भक्त पुंडरीक विद्यानिधि? हमारा हृदय तरस रहा है इस वैष्णव के बारे में सुनने के लिए, कहाँ रहते हैं, उनके गुण क्या है? हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य होगा अगर हम इसके इनके बारे में सुनेंगे। तो महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में आपका सौभाग्य है कि आप पुंडरीक विद्यानिधि जैसे भक्त के बारे में सुनना चाहते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में क्या कहना है? उनका चरित्र परम अद्भुत है, केवल उनका नाम का श्रवण करने मात्र से सारा विश्व शुद्ध हो जाता है। बाहर से तो वो बिल्कुल एक विषयी आदमी लगते हैं, भौतिक आदमी लगते हैं। विषयी मतलब क्या है? जो विषयों में रमण करते हैं। विषय मतलब क्या? ये संसार के भोग की वस्तुएं, इनको विषय कहते हैं। और इन विषयों में जो रमण करता है, भोगी व्यक्ति है, उसको विषयी कहते हैं। जैसे बताया जाता है विषयी अन्न खाए दुष्ट है मन, चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं कि अगर किसी विषय व्यक्ति का अन्न आप खाओगे तो मन दुष्ट हो जाएगा, मतलब मन में भौतिक इच्छाएं आ जाएंगी, भोग की इच्छाएं आ जाएंगी। क्योंकि जिस व्यक्ति का भोजन आप खाओगे उस व्यक्ति की चेतना का प्रभाव हमारे चेतना के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए हमें केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, इधर उधर जाके कुछ खाना नहीं चाहिए, होटल में बाहर इधर उधर विषयी। तो इस तरह से महाप्रभु बता रहे हैं कि बाहरी रूप से तो दिखते हैं एक विषयी भोगी व्यक्ति, लेकिन है परम वैष्णव, सदा वो कृष्ण भक्ति के सागर में वो तैरते रहते हैं और उनका शरीर सदा अष्ट सात्विक विकारों से सुशोभित रहता है। बहुत ही विद्वान है, धर्मों के नियमों का पालन भी बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। उनका जन्म चट ग्राम में हुआ था, फिर भी उनका एक घर यहाँ पर है नवद्वीप में। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी आपकी प्रार्थना से आपके विचारों से उनको यहाँ पर आकर्षित करें। जब वहाँ पर ये चले आएंगे तो आप में से कोई उनको पहचान नहीं पाएंगे। और फिर से उन्होंने जोर जोर से पुंडरीक हे विद्यारधी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कौन भगवान के कार्यों को समझ सकता है, कौन भगवान के भक्तों की महिमा को समझ सकता है, केवल भगवान समझ सकते हैं। या तो फिर जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान ने कृपा की है वो व्यक्ति समझ सकता है भगवान के भक्तों की महिमा को। इस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त पुंडरीक विद्यानिधि को आकर्षित किया नवद्वीप में आने के लिए। तो जब भगवान की पुकार होती है तो भक्त कैसे नकार सकता है उसे। भगवान की पुकार जो होती है वो हृदय में एक डोरी के समान होती है जो हमें खींचती है। हर एक भक्त को इसका अनुभव है कि ठीक है, कभी कभी हम बाहरी दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं और थोड़ी बहुत हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक उत्साह की अनुभूति होती है भक्ति में, एक प्रकार का आकर्षण होता है हमें मंदिर आने के लिए, भक्ति करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, धाम में जाने के लिए। मानो कि भगवान अंदर से डोरी से डोर से हमें खींच रहे हैं। ये भगवान का बुलावा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके हृदय में ऐसे खींच ऐसे आकर्षण भगवान पैदा कर देते हैं। भगवान तो हृदय में विराजमान है सबके, और अंदर बैठ के वो हमें आदेश दे रहे हैं, देखो मेरा भक्त बनो। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, ये आत्मा और परमात्मा दो पक्षी के बराबर हैं, जो एक डाली के ऊपर बैठे हुए हैं। एक पक्षी जीव केवल उस वृक्ष के फलों का भोग करने को प्रयास कर रहा है। कई फल खट्टे मीठे होते हैं, कई फल नहीं होते, तो ये कर्मों के फल है। लेकिन दूसरी पक्षी जो है वो केवल साथ में बैठकर देख रहे हैं, बस साक्षी। तो भगवान अंदर बैठ के हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं। ऐसे कोई कार्य नहीं है जो भगवान नहीं जानते हैं। भगवान हमारे पापों को देख रहे हैं, हमारे हर एक विचार को जानते हैं, लेकिन अंदर ही से वो हमको बता रहे हैं, चलो मेरी शरण में आओ, मेरी ओर मुड़ के देखो। लेकिन जीव को समय नहीं होता, जीव को रुचि नहीं होती घूम के देखना। लेकिन जो व्यक्ति मुड़ के देखता है, या जिसको भगवान जिसका गर्दन पकड़ के घुमाते उनकी ओर देखने के लिए, बहुत भाग्यशाली है। तो हृदय का डोर है, ये खींच रहा है, आओ मेरे शरण में आओ आओ। इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो कैसे भगवान के पुकार को निकाल सकते थे। तो वो चले आए और जब नवद्वीप में आए अपने दूसरे घर में निवास करने के लिए, तो जैसे महाप्रभु ने बताया था कि दिखने में तो विजयी थे, अपने सारे दल के साथ आए, उनके साथ में नौकर चाकर उनके सहायक और कई ब्राह्मण आए, ये वो बहुत ठाठ से आए अंदर। और सारे नवद्वीप के लोगों ने सोचा कि ये और कोई विषय याद नहीं आया, चलो थे बड़े ब्राह्मण इसलिए लोगों ने पहचाना नहीं। और जैसे ही वो आए तो सारे वैष्णवों ने पहचाना नहीं उनको। केवल दो व्यक्ति थे महाप्रभु के अलावा जिन्होंने कि उनको पहचाना। एक थे मुकुंद दत्त जो कि एक वैद्य थे, और यही मुकुंद हैं जो कि बहुत सुंदर मधुर भजन किया करते थे, गाते थे। वो चट्टग्राम के थे, उनका जन्म वहां हुआ था, इसलिए वो पहचान पाए। और वो जानते भी थे कि पुंडरीक विद्यानिधि कितने महान भक्त हैं। साथ साथ उनके भाई वासुदेव दत्त वो भी पहचानते थे। वासुदेव दत्त का नाम आपने सुना है, कौन सी लीला हुई थी वासुदेव दत्त के साथ, बहुत विशेष लीला हुई थी, कोई बता सकते हैं। वासुदेव दत्त ने एक बार चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया था कि हे प्रभु, लोगों के दुख को देखकर मैं सहन नहीं कर सकता, तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि जितने भी जीव नरक लोक में हैं या ब्रह्मांड में हैं, उनका उद्धार कर आप उनको अपने धाम में ले जाइए और अगर आप सोचेंगे कि इनके कितने पुण्य पाप बाकी हैं, अभी तक क्षीण हुए नहीं है, तो ये सारे पाप जो है उनके लेकर वो मेरे ऊपर डाल दीजिए और मैं सदैव नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनका उद्धार कर दीजिए। तो वासुदेव ऐसे दिखावा करने के लिए बोल नहीं रहे थे, वो नाटक नहीं कर रहे थे कि भगवान को दिखाएं कि हम कितने करुणामय हृदय वाले हैं। नहीं, वास्तव में उनकी ये भावना थी और वो तैयार थे नरक में रहने के लिए हमेशा के लिए। तो महाप्रभु अंदर है, वो भगवान श्री कृष्ण, वो हृदय की बात जानते हैं, कौन दिखावा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो वो जानते थे कि वासुदेव दत्त की हृदय की बात क्या है। तो बड़े भावभोर हुए महाप्रभु, उन्होंने कहा कि वासुदेव तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, सारे जीवों का उद्धार होगा। लेकिन ये याद रखो, ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मानो कि एक सरसों के बीज के बड़े बड़े गोनी में, थैली में एक बीज आपने निकाल कर फेंक दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कितने सारे करोड़ लाखों बीज अभी और हैं। उसी तरह से मैं इस ब्रह्मांड के सारे जीवों का उद्धार तो कर सकता हूँ, परंतु और कितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनका क्या। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है ना, तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा और नरक में भी जाने की जरूरत नहीं है। वासुदेव दत्त इतने उदार हृदय के थे कि उनके बालों में भी जब वो आते थे, क्या रहते वो कोई जीव जंतु आते हैं ना, आपने बंदरों को देखा होगा एक दूसरे के वो निकालते रहते हैं, वृंदावन में देखा होगा है ना, जुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं जुए, तो आते थे या कोई ऐसे जंतु भी आते थे तो वासुदेव क्या करते, वो गिर भी जाते तो उनको उठाकर फिर से रख देते, कहते हैं बेचारे उनको उनका स्थान जो है वो चला गया है, वो बेघर हो गए, उनको भी तो कोई हक है ना, कुछ रहने का जगह चाहिए। हम भी आकर किसी के घर में रहते हैं, ये प्रकृति आके भगवान का है, हम हड़प करके बैठे मेरा मेरा कहके, तो सबका अधिकार है, जैसे चूहे हैं कॉकरोच हैं उनको भी हमारे घर में अधिकार है, ऐसे नहीं कि हम उधर के लिए जू खोल के बैठ जाएं। लेकिन एक आध बार आ जाते हैं तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाल जी कहा करते थे कि एक उनके पहचान वाले एक व्यापारी थे, कपड़े के व्यापारी, तो क्या होता था कि उनके दुकान में कभी कभी चूहे आकर कपड़े खा जाते थे, कपड़े ऊपर दाग कर देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है मुझे भी चूहों की सेवा करनी चाहिए, उन्होंने हर रोज अपने दुकान के अंदर एक चावल का पात्र रखते थे, बड़े बुद्धिमान थे, तो चूहे आते चावल खाते, कपड़े को हाथ नहीं लगाते, चावल खाते चले जाते। तो इस तरह से पशु प्राणी की भी रक्षा की, अपने माल की भी उन्होंने रक्षा की। वैसे शास्त्र में बताया जाता है कि मनुष्य को, खास करके गृहस्थ को, उसका कर्तव्य होता है कि न केवल अतिथियों का सेवा करे लेकिन सारे प्राणियों की सेवा भी करे, लेकिन घर के बाहर से उनके लिए रखे कुछ ताकि वो आके खा के चले जाएं। तो कह रहे थे वासुदेव दत्त और उनके भाई मुकुंद दत्त, ये बहुत सुंदर भजन किया करते थे। तो केवल ये दोनों पहचान पाए कि ये कौन है, बाकी सब नहीं पहचान पाए। चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद हुआ जब उनको पता चला कि यहाँ पर आ गए हैं। और उस समय मुकुंद दत्त ने अपने प्रिय मित्र गदाधर पंडित से कहा कि देखो गदाधर, तुम एक बहुत अद्भुत वैष्णव से मिलना चाहते हो, अभी नवद्वीप में आए हैं। मुकुंद दत्त गदाधर को सब कुछ बताते थे, जो भी उनके मन में बात थी, क्योंकि बहुत निकट के मित्र थे, जो भी खबर उन्होंने सुनी है वो बताते थे, लेकिन केवल अच्छे वैष्णव जैसे खबर बताते थे। तो गदाधर ने सुना कि वैष्णव आए हैं, तो कहा कौन है वैष्णव, कहा कि पुंडरीक विद्यानी जी नाम के वैष्णव है, अगर तुम चलोगे मेरे साथ तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे तुम्हारा दास स्वीकार कर रहे हो। तो गदाधर पंडित तो ऐसे महान वैष्णव को मिलने के लिए बहुत आतुर थे, और मुकुंद दत्त की बातों को सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में उनके हृदय में काफी श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो फिर चले दोनों पुंडरीक विद्यानिधि के निवास स्थान में, और जैसे अंदर गए तो उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि का दर्शन किया। वो वहां बैठे हुए थे, तुरंत गदाधर पंडित ने जाके उनको दंडवत प्रणाम किया, पुंडरीक विद्यानिधि ने उनको एक आसन दिया बैठने के लिए और पूछा मुकुंद दत्त से कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं। इनको देखकर, इनकी सुंदर आकृति और प्रकृति को देखकर और इनके शरीर के ऊपर जो तेज है उसको देखकर मैं समझ रहा हूँ कि ये महान विष्णु भक्त हैं। तो फिर मुकुंद दत्त ने पहचान करा के गदाधर पंडित की, कहने लगे कि ये माधव मिश्र नाम के ब्राह्मण के पुत्र हैं, अति भाग्यशाली हैं, बचपन से ही संसार से निरासक्त रहे और विष्णु भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और कृष्ण के अलावा कुछ और जानते ही नहीं हैं, बड़े सौम्य और नम्र स्वभाव के हैं, बड़े भाग्यवान हैं, सारे भक्त इनसे बहुत प्रेम करते हैं, एक बार कोई उनको मिल जाता है तो उनका भक्त उनका प्रिय व्यक्ति बन जाता है। तो उन्होंने सुना कि आप आए हैं तो आपका दर्शन करने के लिए, आपका संग प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वो आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए पुंडरीक विद्यानिधि इस बात को सुनकर और फिर बड़े आदर पूर्वक गदाधर पंडित से बात करने लगे। फिर गदाधर पंडित बड़े गौर से देखने लगे पुंडरीक विद्यानिधि को, क्या देखा, देखा कि ये तो एक राजकुमार लग रहे हैं, जो उन्होंने कल्पना की थी कि एक महान वैष्णव की, वो तो ऐसे कुछ नहीं लग रहा था। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि की घर की स्थिति क्या थी और उनकी व्यक्तिगत स्थिति क्या थी। वो बैठे थे एक आलीशान एक बिछाने के ऊपर, तकिए के ऊपर, जहाँ पे शानदार वो सब हाथ रखने के लिए टेकर बैठने के लिए जगह थी और पास में रेशम से मुलायम एक बिस्तर, उसमें तकिया सब जगह, ऊपर छतरी वो भी रेशम के और उनके कपड़े भी बिल्कुल रेशम के, नाना प्रकार के गहने, और फिर बैठकर पान चबा रहे थे आराम से, यूं बैठकर जैसे राजा बैठते थे पान चबाने के लिए, और फिर पान थूकने के लिए भी सुंदर सुंदर महंगे महंगे चीजों के जो पात्र थे दो इधर एक इधर, पानी पीने के लिए भी सुंदर पात्र और जगह जगह ऐसे सब सोने चांदी की चीजें, और फिर बैठे हैं स्वयं आराम से, और उनके बाल का क्या कहना, सुगंधित आमला की तेल से सुशोभित और सुगंध आ रहा था, और इधर नौकर उधर नौकर फिर मोर पंख लेकर हवा दे रहे हैं उनको, और बस शानदार राजा की तरह बैठे हुए हैं, पान चबा रहे हैं हाथ मुद्रा में, ऐसे वैसे गुप बोल रहे हैं। तो गदाधर पंडित के मन में संशय उत्पन्न हुआ। अब बेचारे गदाधर पंडित बचपन से इतने सिंपल सरल भक्त थे, कोई भी विषय में रुचि नहीं रखते थे कृष्ण के अलावा, भोग से बिल्कुल निरा सकते थे बचपन से, भोग क्या है उनको मालूम नहीं था, केवल दूसरों को देखते थे ये लोग इतने भोगी हैं। तो इसलिए उनके मन में विचार था कि भक्त मतलब मेरे जैसा होना चाहिए, मतलब जो बिल्कुल एक निरासक्त है बाहरी रूप से। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि इनका वेश, इनका खाना पीना रहन सहन और इनका सब घर, ये सब देखेंगे पालकी सामने उनको उठाने के लिए, पालकी में भी क्या क्या सब आभूषण वगैरह। तो सोच लगे कि मैंने क्या कल्पना की थी, मुकुंद दत्त के वाणी के ऊपर मैंने श्रद्धा रखी, मेरे मन में पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति श्रद्धा हुई थी, तो मैंने सोचा कि सिंपल टूट फटे हुए कपड़े पहनकर कोई आदमी रहेगा और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, ये कुछ अलग ही बात हमारे सामने आई है। तो उनके मन में पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति श्रद्धा कम हो गई। अब मुकुंद दत्त सामने खड़े थे पास में, उन्होंने तुरंत पहचान लिया गदाधर पंडित का चेहरा देखकर। तो फिर उन्होंने सोचा अच्छा ये बात है, तो गदाधर पंडित शायद अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, ठीक है। तो कहने लगे गदाधर जरा सुनो और देखो। तो फिर मुकुंद दत्त जो कि बहुत मधुर उनकी वाणी कोकिल जैसी थी, बहुत मधुर वाणी उनकी, तो पूतना के बारे में कहने लगे। कहने लगी कि पूतना बड़े निर्दयी स्वभाव की महिला थी, चुड़ैल थी वो, और वो वृंदावन में आई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन फिर भी कृष्ण इतने दयालु रहे कि उन्होंने उनका उद्धार कर लिया। और फिर श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का जो प्रसिद्ध श्लोक है उसका उच्चारण करने लगे। हम सब साथ में बोलेंगे उस श्लोक को, आप सब जानते हैं ना, अहो गकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदस्य साध्वी
ले भेदतिं गात्रोचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
जिन्होंने कहा था श्लोक, किसने कहा था भागवत में? उद्धव, उद्धव ने कहा था विदुर जी को। ये विदुर जी पूछ रहे थे कृष्ण के बारे में, विदुर जी घूम रहे थे, दुर्योधन ने उनको बहुत अपमान किया था और ये दुर्योधन के कटु वचन उनको तीर के समान हृदय में लगे थे। तुरंत हस्तिनापुर छोड़कर वो चले गए थे तीर्थ यात्रा के ऊपर और उनको पता भी नहीं था कि युद्ध हो गया, युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि वो बाहर निकल चुके थे। तो जब युद्ध समाप्त हो गया, काफी समय बीत गया, युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठे थे, कृष्ण भगवान कई महीने हस्तिनापुर रहे उनके साथ, फिर वापस कृष्ण भगवान द्वारका चले आए, काफी समय तक वहां पर रहे और फिर स्वयं श्री कृष्ण भी स्वधाम चले गए, वैकुंठ गोलोक वृंदावन चले गए और उसके बाद में उद्धव भगवान की आज्ञा के अनुसार बद्रिक आश्रम की ओर जा रहे थे अपने अंतिम दिनों को बिताने के लिए। उस समय विदुर की मुलाकात अकस्मात हुई थी, लेकिन विदुर को नहीं मालूम था क्या सब हो गया है, युद्ध हो गया, कृष्ण भगवान वापस चले गए, कुछ नहीं मालूम था। तो वो कृष्ण भगवान के बारे में पूछ रहे थे, द्वारका में सबके बारे में पूछ रहे थे, अनिरुद्ध कैसे है, प्रद्युम्न कैसे है, रुक्मिणी देवी कैसी है, सत्यभामा देवी कैसे है, उग्रसेन महाराज कैसे हैं, हमारे पांडव मित्र कैसे हैं। जब कृष्ण का नाम आया तो उद्धव ने ये श्लोक कहा, हम कैसे भगवान कृष्ण से ज्यादा कृपालु कौन हो सकता है, जिन्होंने पूतना जैसे राक्षसी का उद्धार कर दिया। हालांकि पूतना कृष्ण को मारने आई थी, स्तनों के विष का लेप लगा कर आई थी इस इच्छा से कि जब कृष्ण स्तनपान करेगा तब वो मर जाएगा। तो हालांकि इच्छा लेकर आई थी, लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि वो विष लगा कर आई है, भगवान ने देखा कि ये माँ का रूप लेकर आई है, इसलिए गोलोक वृंदावन ने उसे माँ का स्थान दिया। तो ये श्लोक जब मुकुंद दत्त ने कहा तो फिर हल्ला ही मच गया वहां पर कमरे में, बड़े जोर जोर से भाग भोर होकर प्रेमावेश में आकर पुंडरीक विद्यानिधि जोर जोर से रोने लगे, हा कृष्ण हा कृष्ण, और अचानक उनके शरीर में सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो गया और फिर इधर उधर पैरों को फैलाने लगे, इधर पैर मार दिया, चूर चूर सब कुछ हो गया। उनके सामने जो भी बिस्तर था, जो भी पान के पात्र थे और सुंदर पान लगाए हुए थे, सब टूट गए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कहाँ गया वो पालकी, कहाँ गया वो सुंदर रेशम सुशोभित बिस्तर, कहाँ गया उनका सुंदर आसन, अपने कपड़े भी फट गए और कहाँ गया उनका सुंदर सुशोभित वो आंवला की तेल से युक्त बाल, सब बिखर गया इधर उधर, दस लोग भी उनको पकड़ नहीं पाए और इस तरह से काफी समय तक लोग नीचे गिर पड़े और लोग सोच रहे अरे हड्डी तो नहीं टूट गई इनकी, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं था। ये एक श्लोक सुनकर उनको कृष्ण का स्मरण इतनी तीव्रता से होने लगा कि वो अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर कहने लगे कि हे कृष्ण, आपने मुझे इस अवतार में धोखा दिया है, आप छुप कर आए हैं, और हे कृष्ण कहते हुए वो बेहोश हो पड़े हुए और अंदरूनी आनंद की अनुभूति कर रहे थे, बाहरी चेतना नहीं थी। तो गदाधर ने देखा, रे ये क्या है, फिर उनके मन में तुरंत पश्चाताप होने लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने क्या सोचा था, मैंने केवल बाहरी दृष्टि से देखा, ये तो विषय लग रहा था पूरी तरह से, इनका रहन सहन का ढंग, खाने पीने का वेश, सब कुछ पोशाक, लेकिन अब मैं देखता हूँ ये तो महाभागवत है, ये तो कोई साधारण बात नहीं है। तो तुरंत मन में घबराहट सी होगी कि अरे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो फिर मुकुंद के पास गए, मुकुंद दत्त वहां पर खड़े थे, वो सब देख रहे थे, तो मुकुंद से कहने लगे कि हे मुकुंद, आप मेरे वास्तव में सच्चे मित्र हो, क्योंकि आपने मुझे बहुत महा अपराध से बचा दिया है। मेरे मन में ऐसा संशय उत्पन्न हो गया था पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, लेकिन आपने श्लोक का उच्चारण करके सत्य क्या है मुझे बता दिया, और इसलिए आपकी वजह से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर एक कृपा करें कि किसी न किसी तरह से मैंने जो अपराध किया है इसका निवारण होना चाहिए। तो फिर गदाधर पंडित सोचने के क्या किया जाए, किस तरह से इस अपराध का निवारण हो जाए। तो फिर उन्होंने मुकुंद दत्त से कहा कि शायद मुझे लगता है कि जो मेरे मन में मैंने अपराध किया था पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, उसका निवारण करने के लिए एक उपाय है कि ऐसे महाभागवत के शरण में मुझे जाकर उनसे मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। आखिर हर एक व्यक्ति को गुरु चाहिए, तो इनसे मैं दीक्षा स्वीकार करना चाहता हूँ। आपका क्या मत है, इससे मेरा अपराध शायद खत्म हो जाएगा। तो मुकुंद दत्त को बहुत अच्छा लगा, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और फिर पुंडरीक विद्यानिधि पूरे 6 घंटे ऐसे बेहोश अवस्था में थे, 6 घंटे के बाद जागे, और जब बाहरी होश में आए तो गदाधर पंडित की आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे, उनके चरणों को धो डाला था पाए उन्होंने अपने आंसुओं से। फिर दोनों ने आलिंगन किया और पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर दोनों बड़े खुश हुए। फिर मुकुंद दत्त ने पुंडरीक विद्यानिधि को गदाधर के मन की बात बताई, ये मेरे साथ आए थे आपका दर्शन करने के लिए, लेकिन जब आपके बाहरी रूप को देखा तो उनके मन में संशय हो गया था, इसलिए जब आपकी भक्ति उन्होंने देखी तो उनको पता चला कि उन्होंने मन शिष्य मुझे मिलेगा। अगर ऐसा शिष्य किसी को मिले समझना चाहिए कि करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल है, तो अवश्य मैं इसे दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो आने वाले शुक्ल पक्ष की द्वादशी में मैं इसे दीक्षा दे दूंगा। तो इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि भी खुश थे, गदाधर पंडित भी खुश थे और मुकुंद दत्त भी खुश हुए और कहने लगे कि आदर्श गुरु शिष्य की जोड़ी है ये, इससे श्रेष्ठ जोड़ी कहाँ मिल सकती है। तो उसके बाद गदाधर वहां से निकल पड़े और महाप्रभु का दर्शन करने के लिए चले गए। थोड़े समय बाद पुंडरीक विद्यानिधि गुप्त अवस्था में अकेले महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए। जब वहां पर गए तो जैसे ही महाप्रभु को देखा तो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर महाप्रभु ने उनको उठाया, आलिंगन किया, फिर उनके होश आ गया, तब जोर जोर से हुंकार करने लगे, गर्जना करने लगे और फिर से भक्ति के लक्षण उनके अंदर प्रकट होने लगे। ये सब को देखकर चैतन्य महाप्रभु भी, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, वो भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने गदाधर को आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे को अपने आंसुओं से नहलाने लगे। तब तक अन्य भक्त भी आ गए थे, वो सभी सुंदर दृश्य को देख रहे थे और वो सभी भावविभोर हो गए। और इस तरह से दोनों पुंडरीक विद्यानिधि और चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे थे 3 घंटे। ऐसे लग रहा था कि एक शरीर हो गया है। और जब पुंडरीक विद्यानिधि की होश फिर से खुल गए तो महाप्रभु ने घोषणा की कि ये है पुंडरीक विद्यानिधि, हे वैष्णव उनको पहचान लो, भगवान ने खास उनको यहाँ भेजा है कृष्ण भक्ति का रस सब जगह फैलाने के लिए। और फिर महाप्रभु ने आदेश दिया कि अब कीर्तन होना है और सभी ने कीर्तन किया और कीर्तन में पुंडरीक विद्यानिधि ने भी भाग लिया। और महाप्रभु कहने लगे कि आज का दिवस कितना अच्छा दिन है, कितना शुभ दिन है, तो मुझे साक्षात प्रेम निधि का दर्शन हुआ। विद्या निधि प्रेम निधि, निधि मतलब सागर, तो कृष्ण प्रेम के सागर है ये। तो आज का दिन कितना शुभ है कि प्रेम के सागर प्रेम निधि पुंडरीक विद्यानिधि का दर्शन हम सबको हुआ। इस तरह से कौन समझ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने कौन से भक्तों को बुलवाया, किस तरह से उनको प्रकट कराया और किस तरह से सब एक मिलकर वो इस नाम संकीर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। इस तरह से जगह जगह से जो भक्त अलग अलग जगह जन्म लिए थे महाप्रभु के भक्त, वो धीरे धीरे से भगवान की इच्छा के अनुसार नगरद्वीप में आने लगे और वहां से आकर वो कीर्तन में भाग लेने लगे। वैसे नित्यानंद प्रभु हमेशा भगवान के साथ में रहा करते थे और इन अलग अलग भक्तों के घर में जाकर चैतन्य महाप्रभु अपने अलग अलग रूप दिखाया करते थे। कभी किसी को मत्स्य अवतार रूप दिखाते थे, कभी किसी को कूर्मा, कभी नरसिंह, कभी ऐसे अलग अलग अवतार, ताकि सारे भक्तों को पता चला। ये प्राय एक दैनिक कार्य था चैतन्य महाप्रभु का, अलग अलग भक्तों के घर में जाकर उनको उनका दिव्य रूप दिखाना। जब पुंडरीक विद्यानिधि के पास चैतन्य महाप्रभु के पास पुंडरीक विद्यानिधि आए थे तो उस समय गदाधर पंडित ने उनको बताया था कि मैंने इनके प्रति अपराध किया था और इसलिए मैं अभी इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो आपकी अनुमति चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कहा शीघ्र आके शीघ्र कर दो, जल्दी से जल्दी। और फिर जल्दी से धूमधाम से फिर दीक्षा का समारंभ हो गया और पुंडरीक विद्यानिधि ने कृष्ण मंत्र गदाधर पंडित के कानों में कह दिया। उधर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साथ में मिलकर भक्तों के संग में कीर्तन किया करते थे। ऐसे दिन बीतते गए नगरद्वीप में। एक दिन सची माता ने अपने ही घर में अकेले में चैतन्य महाप्रभु से विश्वम्भर से कहा कि देखो विश्वम्भर, कल रात को कोई विचित्र बात हुई, मुझे एक अद्भुत स्वप्न आया और ये स्वप्न ऐसे था कि मैंने तुम्हें और नित्यानंद को देखा सपने में और तुम दोनों 5 साल के बालक की तरह थे और तुम दोनों अंदर इस घर में खेल रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे जैसे कि दो छोटे बच्चे करते हैं। और फिर तुम दोनों हमारे मंदिर में गए, घर के मंदिर में, पूजा घर में, जहाँ की हमारे कृष्ण बलराम की मूर्तियां हैं। सखी माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में कृष्ण बलराम की मूर्ति थी, साथ साथ कई शालग्राम शिला भी थे जैसे कि ब्राह्मणों के घर में हुआ करते थे। तो आप पहले अंदर गए और फिर विश्वम्भर तुम बलराम की मूर्ति को हाथ में लेकर आए और नित्यानंद कृष्ण की मूर्ति लेकर आया और फिर मैंने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा कि आप चारों के बीच में झगड़ा होने लगा। बलराम कहने लगा और कृष्ण भी कहने लगे कि आप कौन हो, आप लोग नकली आदमी हो, आप इस घर में कैसे आते हो, यहाँ आकर यहाँ दूध मक्खन संदेश मिठाई खाने वाले जो कि हमारा अधिकार है भोग करने के लिए, आप कैसे यहाँ पर आ गए। तो फिर नित्यानंद ने जवाब दिया कि आप जो ग्वाल बाल है आपका जमाना चला गया, अभी आप प्रकट हुए ब्राह्मणों के रूप में, अभी हट जाओ आप लोग, अभी आपका कोई स्थान नहीं है, अभी हमारा स्थान है, अभी दूध मक्खन चोरी वाले करने का समय चला गया, अभी नाम संकीर्तन का समय है और अगर आप तो हमें ये मक्खन दूध संदेश वगैरह खाने के लिए नहीं दोगे तो देखना, फिर हमसे हमारे हाथों से पिटाई हो गई तो हमें मत कहना। तो फिर बलराम नित्यानंद से कहने लगे, अरे देखो अभी हमें तुम दोनों को बांध के रखना होगा, अगर हम बांध के रखेंगे तो हम जिम्मेदार नहीं इसके लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जब कृष्ण बलराम ऐसे बोल रहे हैं उनको, वो कहना चाहते हैं कि ठीक है अभी कृष्ण बलराम का समय गया, अब युग है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का, अभी गौर नित्यानंद का जमाना है, वो अभी कृपा करने वाले हैं कलयुग के लोगों के ऊपर। तो जब उन्होंने कहा कि हम आपको बांध के रखने वाले हैं, इसका मतलब आपको मूर्ति के रूप में रखेंगे, कृष्ण बलराम की जगह गौर नित्यानंद रखेंगे, अभी हमारा काम हो गया, हम द्वापर युग में थे, अभी कलयुग में गौर नित्यानंद आए हैं। फिर नित्यानंद को बलराम ने कहा कि देखो मैं मेरे भाई कृष्ण के नाम पे कहता हूँ, ज्यादा मस्ती मत करना इधर। तो फिर नित्यानंद जवाब दिया, अरे तुम्हारे कृष्ण से हम थोड़ी डरते हैं, हमारे विश्वम्भर इधर हैं, हमें कोई डरने की बात नहीं है। फिर उस समय सखी माता कहने लगी, मैंने नित्यानंद का आवाज सुना, वो कहने लगे माँ मुझे भूख लगी है, मुझे चावल चाहिए, अन्न चाहिए, तो उस समय सची माता का स्वप्न टूट गया। तो कहने लगी, ये अद्भुत स्वप्न मैंने देखा, इसका क्या मतलब है? बेचारी सची माता, उनको ऐसे अद्भुत अनुभव होते रहते थे दिन भर, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। निमाय पंडित और चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसे सुंदर लीलाएं किया करते थे। तो बड़े मासूम चेहरे से निमाय पंडित कहने लगे, अच्छा ऐसा स्वप्न हुआ, मैं जैसे कि वो कुछ मालूम नहीं उनको। अच्छा देखो, इसका मतलब है कि हमारे घर में जो कृष्ण बलराम की मूर्तियां हैं, वो मूर्ति नहीं है, साक्षात कृष्ण बलराम है। मतलब इसे हम समझ सकते हैं कि ऐसा विग्रह स्वयं भगवान होते हैं, कोई प्रतिमा नहीं होती है। हाँ माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मन में एक संशय हुआ करता था, जब भी आपकी बहू विष्णुप्रिया जब वो भगवान को भोग चढ़ा रही थी, मैंने कई बार देखा कि प्लेट आधा खत्म हो जाता था। वैसे जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो अगर आप फिर से थाली लेने जाते हैं और आधा थाली देखते हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि किसी ने कुछ शरा गड़बड़ किया है ना। तो वो कहने लगे कि मैं कई बार आता था और मैंने देखा कि आधा खाली रहता था प्लेट, और फिर मैं तुम्हारी बहू के ऊपर शक करता था कि शायद उसने खा लिया है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि हाँ, ये कृष्ण बलराम साक्षात उधर स्वयं खड़े हैं, और ये आपकी बहू का कसूर नहीं है, मेरी श्रद्धा बढ़ गई है अभी। और दूसरे कमरे में विष्णुप्रिया सब सुन रही थी और हंसने लगे। तो इस तरह से समय बीतने लगा। फिर नित्यानंद, फिर चैतन्य महाप्रभु ने सची माता से कहा, खैर कोई भी बात है, आप चिंता नहीं करो, मैं नित्यानंद को प्रसाद के लिए बुलाता हूँ। सची माता बहुत खुश है, जल्दी से बुलाओ बुलाओ। तो फिर वो नित्यानंद को बुलाने के लिए गए, और जब वहाँ पहुंचे नित्यानंद प्रभु के घर, कहने लगे, गोसाई चलो हमारे घर में प्रसाद लेने के लिए। चलो प्रसाद के लिए हमेशा तैयार, क्या नित्यानंद प्रभु तो आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनसे कि देखो, लेकिन एक सावधान कहता हूँ, मस्ती नहीं करना उधर जाकर, वहाँ शरारत नहीं, गड़बड़ नहीं करना, अवधूत हो वहाँ जाके, कुछ न कुछ हमेशा तुम्हारी आदत है। तो नित्यानंद प्रभु ने गंभीर स्वरूप धारण किया, अरे मैं क्या पागल हूँ क्या, ऐसे मस्ती गड़बड़ करने के लिए, सबको अपने जैसे समझा है क्या, इसलिए जो मस्ती करते हैं। तो इस तरह से दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए वापस चले आए सची माता के घर में, पर वहां पे दोनों बैठे और सची माता हड़बड़ आ गई, तीन थाली रख दिए सामने दो के बजाय। फिर जब दोनों हंसने लगे तो तीसरी थाली उठा के ले गई। फिर अंदर से जब वो चावल इत्यादि लेकर बाहर आ रही थी, अचानक उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। बेचारी सची माता हमेशा ऐसे अद्भुत दृश्य देखती रहती और उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत देखा कि यहाँ जहाँ पर उनका विश्वंबर बैठा था और नित्यानंद बैठा था, ठीक उसी जगह में ये दोनों नहीं बल्कि दो बालक बैठे हैं। एक जहाँ विश्वंबर बैठा था वहाँ बालक सांवला रंग का है, दोनों निर्वस्त्र हैं, बच्चे 5 साल के हैं, और सांवला रंग का बच्चा उसके मोर पंख है, बहुत सुंदर है, और उसके वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स है, और हाथ में बांसुरी भी है, और उनके साथ में जो बैठे हैं बिल्कुल गोरा गोरा सा लड़का है, छोटा बच्चा, वो भी 5 साल का, और उसके कंधे पे मुशल है और हल भी है। तो जब सची माता ने देखा तो हड़बड़ा गए, तुरंत वो बेहोश होकर गिर पड़े, खड़ी थी वो लेकिन गिर पड़े, बेहोश हो गए, और उसका सारा जो हाथ में जो भी बर्तन वगैरह था, उसका प्रसाद था, वो सब गिर के बिखर गया। और फिर सची माता को जब होश आया, फिर अंदर चली गई और एकांत में अकेली रोने लगी, क्योंकि अंदर से भक्ति भाव की भगवान ने उनको ऐसे अनुभव दिया था, भगवान खुद का दर्शन कराया था, वो भक्ति भाव से भाव बोध होकर अकेले अकेले रोने लग गए। और उधर उनकी जो सेवक थे ईशान ने सारा प्रसाद जो है वो एकत्र किया और फिर खुद उसका सेवन कर लिया, क्योंकि सची माता ने तो दूसरा प्रसाद ला के वहां रख दिया इन दोनों के लिए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए। ईशान बड़े भाग्यशाली थे, क्योंकि पहले से ही वो सची माता के घर में उनकी सेवा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया उसके बाद भी ईशान वहीं पर रहे, अंत तक सची माता की सेवा करते रहे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ईशान के भाग्य की कोई सीमा नहीं है, उन्होंने भगवान की माँ की सेवा की, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह से समय बीतता गया नवद्वीप में। कई सुंदर घटनाएं भी ऐसे हुई। एक बार ऐसे हुआ कि एक उनके घर में शिव भक्त आया। वो भी एक साधु जैसे था, अवधूत। वो घूम घूम के कीर्तन करते करते वो नवद्वीप के सड़कों में घूम रहा था। ऐसे घूम घूम के शिव जी का गुणगान कर रहा था। और निमाय पंडित महाप्रभु के घर के सामने आया। उनके दरवाजे के सामने खड़े होकर गोल 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 घूम के शिव शंभो जय जय भोलानाथ शिव जी की गुणगान कर रहा था। अक्सर हम देखते हैं घरों के सामने साधु लोग आते हैं ऐसे, तो उनको देखकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु भावुक हो गए। उन्होंने शंकर का रूप धारण किया और जो आसपास खड़े थे उन्होंने अचानक शिव जी को देखा। जहां निमाय पंडित खड़े थे बालों में जटा और मैं ही शंकर हूँ कहकर सीधे कूद पड़े वो साधु के कंधे पे आके बैठ गए। गाते रहो गाओ गाओ। और वो बेचारे साधु और भी भाव दौड़ रहे जब आश्चर्यचकित हो गए, कौन अरे कंधे पे बैठ गए, क्या है, कौन है, और गाओ गाओ। तो और भी गाने लगा बड़े जोर से भक्ति भाव से और घूमने लगा। और रामदास ठाकुर कहते हैं आज तक उसने जितने भी शिव जी का भजन किया उसकी फलाह जिसको मिला, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन किया। और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से पूरी तरह से संतुष्ट हुए। और फिर जब उनको होश आ गए तो अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंधे पे बैठा हूँ उसके, तो नीचे उतरे। और क्योंकि वो गृहस्थ थे तो उनको भरपूर दीक्षा दे दी, दक्षिणा दे दी उस साधु को। वो साधु बेचारे खुश हो गए, उसको भेज दिया। साधु को पता नहीं चला कि उसका भाग्य खुल गया था, कि क्या घटना हुई थी, उसका महत्व शायद वो साधु नहीं समझा, लेकिन उसका जीवन धन्य हो गया था। इसका मतलब है कि कोई शिव जी की उपासना करना चाहे निस्वार्थ ढंग से तो फिर शिव जी भी उसे भगवान श्री कृष्ण के पास ले आते हैं। और ऐसे कीर्तन करते करते कृष्ण कथा करते करते महाप्रभु अपने भक्तों के संग नवद्वीप में रहने लगे। और इसके बाद में महाप्रभु ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, अपने भक्तों को एकत्र होकर बुलाया कि हे मेरे भाइयों मेरे मित्रों, हम सब यहाँ दिन भर कीर्तन करते हैं लेकिन रात का क्या, रात का समय हमारा व्यर्थ जा रहा है। तो रात किस लिए है, वो भी कीर्तन के लिए है ना, तो रात को भी हमें कीर्तन करना चाहिए, रात भर करना चाहिए। तो सारे भक्तों ने कहा हाँ जरूर जरूर करेंगे करेंगे। फिर उस समय से श्रीवास पंडित के घर में रात भर की कीर्तन शुरू हो गए। और ये बात प्रसिद्ध चीज है चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप की लीला में जो रात भर की कीर्तन हुआ करते थे। और अगर आपको इनके बारे में सुनना है कि किस तरह से वो रात का कीर्तन किया करते थे और फिर पड़ोस के लोगों के नवद्वीप के निवासियों के क्या विचार थे इसके बारे में और क्या इसका सुंदर रूप था इस कीर्तन का, तो आपको अगले साल गौर कथा में आना होगा, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैतन्य भागवत में जिस तरह वृंदावन दास ठाकुर सुंदर वर्णन करते हैं उस वर्णन को हम आगे बढ़ाएंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। कि हम तीन भुवनों के बारे में सुनते हैं लेकिन ब्रह्मांड में 14 भुवन है तो हमेशा तीन भुवन की बात क्यों होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो ये तीन भुवन ही हमारे क्षेत्र में है, बाकी 14 भुवन तो बहुत ऊपर की बात है। महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक बहुत ऊंचा है हम सबके लिए, और नीचे रसातल पाताल वहां तो हमें जाना नहीं है। इसलिए ज्यादातर जो है ये तीन भुवनों की बात होती है लेकिन है 14 भुवन। भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं 14 भुवन नाही पार उड़े दो अरुण पूरा भागे, कि आपके नाम की तरह 14 भुवन में कुछ इसके तुलना में कोई नहीं है। है 14 भुवन ब्रह्मांड में लेकिन ये तीन हम सबके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोई हरे कृष्ण
श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित कृष्ण लीला में कौन थे?
अभी इनके गौड़ गणोदेश दीपिका से कहना होगा, अब सबका लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन शाम को देख कर बताएंगे आपको। श्रीवास पंडित तो वैसे नारद मुनि के अवतार हैं, और गदाधर पंडित वो राधा रानी के कांति के अवतार हैं। पंचतत्व में जो है, पंचतत्व में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के रूप है, अवतार है, और श्रीवास पंडित नारद मुनि के भक्त शब्द। अन्य जो भी जितने सारे भक्त हैं उनके भी रूप है, गौड़ गणेश दीपिका में बताया जाता है कौन क्या था। जो है वो कौन है, देखिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम, अद्वैत आचार्य महाविष्णु, कभी कभी सदाशिव के अवतार भी कहलाते हैं रुद्र के, और गदाधर पंडित राधा रानी के कांति के अवतार माने जाते हैं हेलो, और श्रीवास पंडित नारद मुनि के। ठीक है, सात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप मतलब कृष्ण जो कि भक्त रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूपकम मतलब नित्यानंद प्रभु भक्त के स्वरूप में आए, भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त का अवतार लेके आए हैं महाविष्णु अद्वैत आचार्य, भक्ताख्यम भक्त कहलाने वाले वो है गदाधर पंडित, भक्त शक्तिकम मतलब श्रीवास पंडित क्योंकि जीव की शक्ति है, तो ये है वो श्लोक का मतलब। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम तमामे भक्त शक्तिकम। पहले से क्या अद्वैत आचार्य का नाम अद्वैत था, क्योंकि एक बार उन्होंने ऐसी लीला की थी कि अद्वैतवाद का प्रचार किया था महाप्रभु को गुस्सा करने के लिए, तो हाँ पहले से ही उनका नाम अद्वैत था। आचार्य क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार के थे, उनका नाम आचार्य था, बड़े पंडित भी थे, और क्यों उन्होंने गुस्सा करना चाहा था, क्योंकि अद्वैत आचार्य उम्र से चैतन्य महाप्रभु से बहुत बड़े थे, और अद्वैत आचार्य वैसे उनके गुरु के गुरु भाई थे, मतलब लौकिक दृष्टि से देखने के लिए, तो वो हमेशा अद्वैत आचार्य का सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे, उनके चरण में प्रणाम करते थे, और अद्वैत आचार्य को बहुत बुरा लगता था इस बात का, क्योंकि अद्वैत आचार्य जानते थे कि लौकिक दृष्टि से भले मैं बड़ा हूँ लेकिन ये तो मेरे आराध्य प्रभु है, मेरे देव है, तो ये मेरे चरण में पड़े ये ठीक नहीं, और मुझे चरणों में पड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, हमेशा मेरे से आदर से बात करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, अगर वो वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं तो उन्हें मुझे डांटना चाहिए। वो दूसरे भक्तों से कहते थे आप बड़े भाग्यशाली हैं कि महाप्रभु आपको डांटते हैं लेकिन हमको कभी नहीं डांटते, हमको बड़े आदर से बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप उनसे ज्यादा प्रिय हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि वो भी एक बार मुझे डांटे, तो मुझे ऐसी कोई तरकीब सोचनी चाहिए। तो उनको मालूम था कि मायावाद का दर्शन सुनने से महाप्रभु आग बबूले हो जाते थे, जिस दर्शन में बताया जाता है कि भगवान का रूप नहीं है, हम भगवान आप भगवान हम सब भगवान, तो जानबूझकर एक बार अद्वैत आचार्य एक सभा में गए और योग वशिष्ठ नाम के शास्त्र के ऊपर टीका करने लगे, पूरा मायावाद भाष्य बोलने लगे, सब जगह खबर फैल गई अद्वैत आचार्य मायावाद भाष्य बोल रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ के वहां आए, उनको वही के वही उनकी पिटाई करने लगे, आसन पर बैठे थे चढ़ के आसन के ऊपर ही उनको पिटाई करने लगे, सभी लोग है क्या हो रहा है क्या कर रहे क्या कर रहे, लेकिन अद्वैत आचार्य तो आनंद में थे, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मुझे प्रभु ने दास के रूप में स्वीकार किया है, तो इसलिए अद्वैत आचार्य ने उस समय अद्वैतवाद का प्रचार किया था, लेकिन नाम तो पहले से अद्वैत था। नीचे योनि में सुवर के योनि में जीव जन्म लेता है और अपने माँ से बिछुड़ के एक भक्त के पास बार बार आता है, तो उस भक्त ने उस सुवर के बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए,
समझा नहीं कृष्ण क्या
है? एक प्राणी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? सब प्राणियों के ऊपर दया दिखानी चाहिए, लेकिन दया दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। शेर के ऊपर दया दिखाना एक तरह का होता है और गाय के ऊपर दया दिखाना और एक होता है। शेर के ऊपर वैसे दया नहीं दिखा सकते जैसे आप घर के कुत्ते के साथ करते हैं। तो दया तो दिखाना है लेकिन अलग अलग तरह से। दया दिखाने का एक तरीका है कि उनको मारो मत, उनको जान से मारो मत। जैसे जब गो रक्षा की बात करते हैं कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? माँ के समान है गाय, हमारे माँ के समान है, सम्मान करना चाहिए। अभी अचानक अगर गाय हमारे गौशाला से भागकर यहाँ मंदिर में आके यहाँ अंदर चले आए, हम तो बैठ के रहेंगे ऐसे, सब लोग उठेंगे ना, हड़बड़ हो जाएंगे, अरे गाय को निकलेंगे नहीं भाई। तो क्या इसका मतलब गाय का सम्मान नहीं करते? गाय का सम्मान करने का मतलब कम से कम मारो मत, हत्या मत करो, प्रेम से देखभाल करो उनका, अपने अपने उचित ढंग से जैसा उचित है उस ढंग से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके ऊपर दया दिखाना चाहिए। ठीक उसी तरह से नीच प्राणी है सूअर इत्यादि, उनके ऊपर भी हम जैसा उचित है वैसे कृपा रख सकते हैं, उनको बचा हुआ कृष्ण प्रसाद दे सकते हैं। जब हम पास में संकीर्तन करते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। वृंदावन में कितने सारे सूअर और नीच योनि हैं, पशु हैं, जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो उनका कितना उद्धार हो जाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि कलयुग में जोर से नाम संकीर्तन करना ही एक उद्धार का मार्ग है। हम हमारा स्वयं का उद्धार हो जाता है और सब पशु पक्षी प्राणी मनुष्य जो भी सुनते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? किसी प्रश्न ये है कि शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नाम नाम अकाय बहुधान जो सर्वशक्ति, कि मेरे बहुत सारे नाम हैं और हर एक नाम में मेरी अचिंत शक्ति मैंने प्रदान कर दी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, तुकाराम महाराज को उन्होंने राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया, तो ऐसे अलग क्यों? एक दृष्टि से देखा जाए तो वो तीनों नाम यहाँ भी हरे कृष्ण मंत्र में है, कृष्ण है, राम है, हरि है, तीनों है। तो ऐसी है क्योंकि वहाँ प्रथा थोड़ी अलग थी, उस हिसाब से उन्होंने उनको वहाँ मंत्र दिया, लेकिन वो तो केवल राम कृष्ण और हरि का उच्चारण करते थे। उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने कलि संतरण उपनिषद से श्लोक का प्रमाण देकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। ठीक एक महाभागवत थे लेकिन वह एक राजसीय वेशभूषा में रहते थे, तो क्या एक भक्त इस वेश में रहना चाहिए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर पुंडरीक विद्यानिधि इतने महान भक्त थे तो ऐसे बाहरी वेश में क्यों थे वो? इसके पीछे कारण है। वो कारण ये है कि कई बार महाभागवत जो होते हैं वो अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना चाहते हैं जो अश्रद्धालु हैं, इसलिए वो अपने आप को ऐसा पेश करते हैं कि केवल जो भक्ति के तत्व को जानने वाले लोग हैं वही केवल उनके पास आएंगे। इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे करते थे। जैसे कि गौर किशोर दास बाबा जी, वो जब आश्रम में रहते थे उनकी कुटिया में, तो उनका भजन बहुत तीव्र हुआ करता था। उस बात सब जगह फैल गई कि बहुत तपस्वी बाबा अभी यहाँ रहते हैं गंगा के तट पे, तो सभी लोग आते थे और सभी लोग भक्त नहीं थे, बहुत कम लोग भक्त थे। ज्यादा से ज्यादा लोग आकर कोई भौतिक आशीर्वाद मांगते थे, हमारे बच्चे की बीमारी को ठीक कीजिए, हमारी लड़की का विवाह नहीं होता है, क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, मैं यहाँ भजन करने आया हूँ, ये सब लोग मुझे सताते हैं दिन भर। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे जगह जाऊंगा जहाँ कोई मेरे पास नहीं आएगा। तो एकदम गंदी जगह में गए जहाँ लोग नदी के तट पर शौच करने आते थे, और वहां पे जाकर अपनी कुटिया बनाकर वहां पे बैठे रहे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन लोग वहां नहीं आते थे क्योंकि वो गंदी जगह थी। छोटे छोटे बस बहुत अच्छा है मेरे लिए तो। और इसके बाद भी जब थोड़े बहुत लोग आने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक दिन बहुत रेशम के सुंदर कपड़े पहने, एक आदमी जो आया था, मैं क्या सेवा करूँ, बोला कि मुझे ऐसे आलीशान कपड़े आप दे दो। तो एकदम शानदार राजा के कपड़े पहने और फिर पान वान हाथ में लेकर वगैरह सड़क के बाजार में, शहर के बाजार में सड़कों में घूमने लगे जानबूझकर सबको दिखाने के लिए। और सबने देखा, अरे यही वो बाबा है, देखो अपने आप को इतना तपस्वी कहलाता है, वहां रहता है, देखो आज रहस्य खुल गया, देखो कैसा आदमी है ये, एकदम इंद्र तृप्ति में मग्न है, देखो उसके कपड़े देखो, हाथ में पान देखो, ये देखो। तो सबने कहा आज पता चल गया। उसके बाद लोगों का जाना वहां बंद हो गया और गौर किशोरदास बाबा जी कहने लगे, वाह बहुत अच्छा, अब मैं शांति से भजन कर सकता हूँ। फिर उन्होंने राजा का पोशाक छोड़ दिया और अपना असली पोशाक धारण किया और भजन करते रहे। तो इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि थी भी ऐसे कपड़े पहना करते थे। पुंडरीक विद्यानिधि का भाव ऐसे था कि वो गंगा जी में जब जाते थे तो स्नान नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान के चरण कमलों से आई हुई है, तो आदर पूर्वक केवल वो गंगा जी के जल का पान करते थे अपने पूजा में बैठने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ऐसे कई पंडित वगैरह होते हैं वो गंगा में स्नान करते हैं अपने पाप को धोने के लिए, लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि बड़े आदर से केवल पान करते थे पूजा के पहले और स्नान नहीं करते थे, इसलिए कि वो अपने पैरों को गंगा जी के जल से स्पर्श नहीं कराना चाहते थे। सोचते कि मेरे लिए आदरणीय है, मेरे पैरों का स्पर्श कैसे होना चाहिए गंगा जी से। रामानुज संप्रदाय के भक्त भी हमने सुना है वो ऐसे मानते हैं, वो गंगा जी में स्नान नहीं करते हैं, वो केवल गंगा जी का जल लेके थोड़े बूंद छिड़कते हैं अपने सर के ऊपर, लेकिन अन्य संप्रदायों में से करते हैं। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि की बात विशेष थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों को वर्णन कर रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, तो कहते थे कि गंगा जी में स्नान नहीं करते ही ताकि वो अपमान नहीं करें, और केवल दर्शन करते हैं गंगा जी का, और वो भी रात में। तो रात में जाकर क्यों दर्शन करते, दिन में नहीं कर सकते? क्योंकि दिन में जब वो गंगा जी के तट पर जाते तो वो देखते है कि कितने सारे अज्ञानी लोग हैं, कोई अपना दर्शन कर रहा है गंगा जी के जल में, कोई कुल्ला कर रहा है, कोई और कुछ कपड़े धो रहा है, साबुन लगा रहा है कपड़े धो रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, अपने आप को धो रहा है। तो उनको बड़ा दुख होता था, कहते थे कि गंगा जी जो कि भगवान चरणामृत है, इसके साथ में लोग ऐसा सब करते हैं, तो उनको बहुत दुख होता था। इसलिए ताकि ऐसे लोगों को न देखे, लेकिन दर्शन करना था उनको, इसलिए रात को आके दर्शन करने चले जाते थे। वास्तव में गंगा जी तो क्या, कोई भी एक जलाशय हो, चाहे नदी हो, कुंड हो, तालाब हो, उसको हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, कोई भक्त हो या न हो, ये एक सभ्यता है। जलाशय के पास में गंदगी नहीं करनी चाहिए, जल में भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए। आजकल दुर्भाग्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदूषित हमारी नदियां हैं, गंगा और यमुना में इतना प्रदूषण है, कचरा इतना है, सारे शहर के गटर वगैरह जो है वो पाइप उसमें गंगा और यमुना में छोड़ते हैं, हमारे पवित्र नदियों में छोड़ते हैं, और फिर सारे फैक्ट्रियों का भी जो है वो भी यमुना में छोड़ते हैं, गंगा यमुना में सब गंदे हो गए हैं। और कितने बार जब आप ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे हाईवे के ऊपर, आप देखेंगे कि नदी में सब लोग शौच कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। पानी को, जल को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, जल का सम्मान, जलाशयों का सम्मान करना चाहिए हमें। तो गंगा जी का और कितना सम्मान करना चाहिए, और राधा कुंड को और कितना करना चाहिए। आप में से जो वृंदावन की यात्रा में गए, आप जानते हैं कि राधा कुंड में स्नान करते समय भक्तों कितने सावधानी से जाते हैं। पहले कई साल हम लोग तो राधा कुंड के पास में जाने के लिए घबराते थे, हमें याद है सब भक्त बदले राधा कुंड एकदम बच गए ना, अपराध नहीं करना, तो बड़े घबराहट से हम जाके थोड़े तीन बूंद सर पे डालते थे, हाथ जोड़ कर आते थे। तो धीरे धीरे से सब मैंने ठीक है स्नान कर सकते हैं, सबसे 10 लोगों 50 लोगों से पूछ पाछ कर फिर संस्था में ऐसी बात हो कि ठीक है स्नान कर सकते हैं, लेकिन मजाक से नहीं, ऐसे नहीं कि एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कना, वैसे नहीं, आराम से प्रार्थना, बड़े प्रार्थना भावना से अंदर डुबकी लगाना, 3 बार और फिर बाहर निकलना आदर से। तो ये भावना, तो पुंडरीक विद्यानिधि की भावना गंगा जी के प्रति ऐसे हुआ करती थी। तो अंदर से पुंडरीक विद्यानिधि वैसे थे, वो बाहर से अपने आप को ऐसे पेश कर रहे थे। श्याम गदाधर पंडित को पता नहीं था कि पुंडरीक विद्यानिधि उनके पिताजी हैं, क्योंकि गदाधर तो श्रीमती राधारानी के अवतार, वो वैसे राधारानी के कांति के अवतार है। और वैसे भी जब लीला होती है तो लीला में लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इस लीला में जो भी उपयुक्त है वो भावना उनको बनाए रखना होता है। अगर सब लोग पहले से ही जान जाए तो फिर लीला में मजा नहीं आएगा। इसलिए कई ऐसी चीजें होती है जो योग माया के प्रभाव से भक्तों को नहीं मालूम होती है। अगले साल हम चर्चा करेंगे महाप्रकाश लीला और अन्य लीलाओं में, जब चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त को पुकार उनसे उस नाम से पुकार रहे थे जो कि वो कृष्ण लीला में थे, हर एक भक्त को उनकी पहचान दिला रहे थे। वो बहुत सुंदर, वो अगले साल आने वाले साल में हम चर्चा करेंगे।